Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ki is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला. प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी.
थैंक यू मनोज. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज राइज अराउंड 0.5%. सेंसेक्स क्रॉसेस 82,000 मार्क. निफ्टी गेन्स ओवर 100 पॉइंट्स. मेजर एशियन मार्केट्स क्लोज मिक्स्ड. And Prime Minister Narendra Modi says country's digital ecosystem is setting global standards for innovation and inclusion.
घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लगभग आधी फीसदी बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 82,000 के स्तर को पार कर गया. निफ्टी 100 अंक से अधिक उछला. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में दिखा मिला जुला रुख. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश का डिजिटल इकोसिस्टम नवाचार और समावेश के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है.
And before we take the first news item, let me share with our listeners that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% लाभ के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 398 अंक बढ़कर 82,172 के स्तर पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 136 अंक बढ़त के साथ 25,182 दर्ज हुआ. छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.7% की वृद्धि हुई. स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% ऊपर आ गया.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस द सेंसेक्स एंड द निफ्टी टुडे एक्सटेंडेड देयर इनिशियल गेन्स एंड क्लोज्ड अराउंड 0.5% हायर. द सेंसेक्स गेन्ड 398 पॉइंट्स टू क्लोज एट 82,172. निफ्टी एडवांस्ड 136 पॉइंट्स टू सेटल एट 25,182. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed on a positive note. The mid-cap index added over 0.7% and the small-cap index increased around 0.2%.
Sensex pack par dhyan dein to 30 mein se 24 companies ke share aaj labh mein rahe. Labh uthane walon mein sabse avval rahi Tata Steel Company, jiske share 2.6% se adhik labh ke saath band hue. HCL Tech ko 2.2% ka fayda hua. अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर 1.7% के आसपास बढ़ गए. घाटा उठाने वालों में प्रमुख एक्सिस बैंक के शेयर 0.9% घाटे में रहे. टाइटन को 0.4% से अधिक और मारुति को 0.2% से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा.
Among the sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended in positive zone amid value buying. Among the top gainers, metal advanced over 2.1%. Commodities rose more than 1.3% and focused IT added over 1.1%.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर 88.79 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार की जाने तक 98.94 पर चल रहा था. प्रकाश जी बाजार में आज भी अच्छी खासी लिवाली हुई है और लगभग आधी फीसदी के आसपास बढ़त के साथ बंद हुए हैं प्रमुख सूचकांक। क्या सब प्रमुख कारण आज की तेजी के पीछे रहे?
इसमें जब हम देखते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं धन कैश काफी है, और कैश के साथ साथ जो विदेश से संकेत आ रहे हैं, विदेशी मार्केट्स में भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, और विदेशी स्टॉक मार्केट्स ने इंटरेस्टिंगली ये रोचक स्थिति है कि उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन को इग्नोर कर दिया।
बिल्कुल,
और शटडाउन को इग्नोर कर दिया, इतनी लिक्विडिटी है और उसके चलते ग्लोबल जिसको संकेत अच्छे आए सुबह से ही एशियन मार्केट से शुरू होके, फिर लिक्विडिटी अपने डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी तो अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तो है ही, ओवरऑल जो फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी है, पीछे आरबीआई ने बड़े स्टेप्स लिए हैं कि काफ़ी अच्छे स्तर पर लिक्विडिटी मेंटेन की जाए, कैश सिस्टम में मेंटेन किया जाए, और फिर पिछले हफ्ते काफ़ी कुछ सेल ऑफ भी हुआ था, तो टेक्निकल करेक्शन भी ड्यू थी, जिसको टेक्निकल करेक्शन बोलते हैं वो ज़रूरी भी होती है, हेल्दी होती है
जी,
क्योंकि उसमें जो आपको जैसे टेक्निकल चार्टिस्ट होते हैं आपको बताते हैं कि कहाँ ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, कहाँ उसको ईज ऑफ हो रहा है, तो उसके चलते सारी चीज़ें जो कंबाइंड हो गए, और जो विदेशी मार्केट्स में जो रैली लीड करी थी वहाँ के टेक्नोलॉजी शेयर्स खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ज़्यादा ही हद तक उसको पुश कर गए, कुछ हद तक कंसर्न्स भी हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं हम लोग उनको खींच रहे, तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइंड हुए तो हम भी विदेशी मार्केट के साथ साथ अच्छे उसकी तरफ चले और आज तो इन्वेस्टर्स का पैसा बना
जी। एंड मिस्टर चावला, डू यू थिंक दैट देयर कुड बी जियोपॉलिटिकल रीजंस एज वेल, बिकॉज वी हैव सीन दैट द इजराइल हमास पीस प्लान्स हैव बीन यू नो हैव गॉट द सील ऑफ अप्रूवल, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, ऑल्दो इट्स नॉट सो डायरेक्टली यू नो लिंक्ड टू द इंडियन मार्केट्स, बट मार्केट्स डू रिएक्ट टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, वुड यू से दैट?
Well, as I said, today the markets globally moved in kind of unison.
Yes.
So the factor geopolitical situation, signs of improvement, if not improvement as yet, of course do make a difference in the overall sentiment. And the market overall, in fact, the global, our market has been in on a bounce back, a kind of a relief rally for the last few days. But our market has been on a recovery mode. Mm-hmm. But some of the American market, for instance, has been consistently going up to the extent that some analysts are suspecting whether they are heading for a bubble sort of thing.
Right.
So geopolitical situation does make a difference. There are signs of improvement. Let's hope it works out the way it has been planned.
यहाँ पर प्रकाश जी समझना चाहेंगे छोटे निवेशकों के और हमारे जो श्रोता हैं उनके नजरिए से कि त्योहारों के इस मौसम में बाजार कुल मिलाकर क्या संकेत दे रहा, और जो निवेशक हैं जो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं त्योहारी सीजन में उनको ध्यान में रखकर आगे का निवेश करें, या आपने अमेरिका के लिए कहा कि वहां बबल जैसी स्थितियां की आशंका भी जताई जा रही है, तो अपने बाजार में कहीं कुछ वैसा तो नहीं है?
हमारा जो रिटेल छोटा निवेशक है बड़ा स्मार्ट हो गया, अब वो इतना भोला नहीं है कि कुछ भी आप उसको बोल दीजिए वो करेगा
जी,
वो स्मार्ट हो गया तो अच्छी बात है, उसको पता है कि मार्केट जो है ना एक रेंज में है, हमारी मार्केट
जी
अभी एक रेंज में है, निफ्टी जो है 25,200 जाएगा, ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, लेकिन उस रेंज का जो मूवमेंट है अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है
जी जी जी,
तो वो उसको मालूम है कैसे, तो अभी मार्केट में ट्रेडर जो बोलते हैं जो खरीदना बेचना टेक्निकल, हालांकि वो सेबी उसको उनको वार्निंग देते रहते हैं भाई इसमें रिस्क है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, उसमें डालते हैं पैसा, डालना तो नहीं चाहिए ज़्यादा खासतौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स को, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं समझते हैं, इसी समझदारी के चलते
जी
अगर आप देखिए गोल्ड में पैसा आ रहा है, क्योंकि गोल्ड आपको एक संकेत दे रहा है पूरे विश्व में क्या होने वाला है
जी,
चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो ट्रेड वार हो, बहुत बड़ा संकेत दे रहा है, हम लोग इग्नोर करेंगे अपने रिस्क पे
जी, वी विल डिस्कस प्राइसेस ऑफ गोल्ड द वे द डायरेक्शन इन विच दे आर मूविंग।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया के प्रमुख शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों की खरीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक लगभग 1.8% बढ़त में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.3% के आसपास थोड़ी अधिक ही वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% से अधिक और हांगकांग का हेंगसेंग 0.3% घाटे में रहा। दक्षिण कोरिया के बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स लगभग 0.7%, फ्रांस का कैक 40 0.4% से अधिक बढ़त में था, जबकि लंदन का फुटसी 100 0.2% घाटे में कारोबार कर रहा था।
Let's move on to the US markets. Among the major US indices, the S&P 500 and the Nasdaq notched all-time closing highs yesterday, led by technology stocks. The tech-heavy Nasdaq Composite Index surged over 1.1% to close at 23,043, boosted by the artificial intelligence-related mega caps. The S&P 500 rose nearly 0.6% to end at 6,754. However, the Dow Jones Industrial Average closed flat with a negative bias to settle at 46,602. Mr. Chopra, very quick question. You were talking about, you know, earlier that how the markets are ignoring, because we see that the markets in US especially, because there's a government shutdown happening right now. So it's very clear that the markets are really not, you know, discounting that. They're moving past it. Would you say that?
Well, markets are in a way discounted that. They have priced in, they have digested it.
Right.
You know, they have digested it. They don't see markets on the over. What they are seeing is global economy, especially the US economy, is throwing an indication as if it's not in bad shape. US economy is not in bad shape. There's a promise on towards the technology, especially artificial intelligence and the tech sector. And but then there are issues regarding the dominance of the USD, you know, dollar, whether as a reserve currency, whether gold is trying to come closer to US dollar to occupy the coveted space,
right,
of being the global reserve currency. So that's why you see so much, as I said earlier, it could be a structural kind of a change, direction.
Right.
Gold is indicate the world, central banks, as we were discussing earlier, central banks all over the world, led by China, even India,
yes,
some of other, Turkey, emerging markets, they're all buying gold, like not seen in the recent past.
Right.
This kind of a situation was likened with the era of 70s.
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल व्यवस्था नवाचार और समावेशन के लिए वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। मुंबई में आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के कारण भारत तकनीकी रूप से सबसे अधिक समावेशी समाजों में से एक है। उन्होंने कहा कि देश में हर महीने यूपीआई के माध्यम से 25 लाख करोड़ रुपए के 20 अरब लेन देन हो रहे हैं।
भारत की फिनटेक कम्युनिटी के प्रयासों से हमारे स्वदेशी सॉल्यूशंस को ग्लोबल रिलेवेंस मिल रही है। इंटर ऑपरेबल QR नेटवर्क्स हो, ओपन कॉमर्स हो या ओपन फाइनेंस फ्रेमवर्क हो, इनमें हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ दुनिया नोटिस कर रही है। इस साल के पहले 6 महीनों में ही भारत टॉप 3 मोस्ट फंडेड फिनटेक इकोसिस्टम में शामिल हुआ है।
इस अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन और भारत स्वाभाविक साझेदार हैं और फिनटेक के क्षेत्र में अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देगा। उन्होंने इस समझौते को दोनों देशों के लिए एक बड़ी जीत बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत ब्रिटेन संबंध मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दूरसंचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम सेमीकंडक्टर, साइबर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाएं उभर रही हैं।
एंड कंटिन्यूइंग विद सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द यूएस प्राइम मिनिस्टर, द टॉक्स बिटवीन द टू प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज यूनाइटेड किंगडम काउंटरपार्ट केयर स्टार्मर टुडे हेल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स ऑन इश्यूज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। अ डेलीगेशन लेवल टॉक वॉज हेल्ड बिटवीन द टू लीडर्स इन मुंबई। एड्रेसिंग अ जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग विद द यूके प्राइम मिनिस्टर लेटर, प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ही सेड इट विल क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ and expand trade between the two nations.
Prime Minister Starmer के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इम्पोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा।
The two countries have agreed to establish India-UK Connectivity and Innovation Center and a joint center for AI and form a critical minerals industry guild to bolster supply chains and promote green technologies, according to a joint statement issued after the meeting. China has imposed new restrictions on rare earth exports targeting critical minerals production technologies and their overseas use, including for military and semiconductor applications. Under the new rules, licenses will be required for the export of technologies used in rare earth mining, smelting and processing, as well as for magnets manufacturing. Foreign firms seeking to supply rare earths produced in China or processed with Chinese technologies will also need to obtain a license. Welcome back to Market Mantra. Mr. Chawla, just before going into the break, as I was talking about the India-UK trade deal and what happened during the day, I also read out a story which said that the two countries have agreed to establish India-UK Connectivity and Innovation Center and form a critical minerals industry guild. So if we take it in context of the fact that China has now imposed new restrictions on rare earth exports, how important is this development that we're talking about where India and UK have decided to form a critical minerals industry guild to bolster supply chains?
Well, it's only recently that the countries around the world have realized the importance of rare earths. After the opening breakout of the trade war,
yes,
people realize how important the rare earths are for the supply chain, for the industrialization, for the technology, for artificial intelligence, for automobile industry, for a host of industries. And China happens to be enjoying the kind of monopoly,
yes,
in this sector. And it's been arm twisting. At least it's showing signs of arm twisting to the rest of the world. And the latest news that you read out,
yes,
points clearly towards that. So under those circumstances, countries around the world other than China are trying to somehow find a solution. If the collaboration is required, we must do it. So India-UK collaboration in this regard should be seen in that context. It's a development, welcome development. And let's hope that we achieve the desired goals, objectives. But it's a time-taking process.
Right.
Rare earths are not done in a short time. You need to invest time and money. Let's hope we move in the right direction.
Prakash ji, यहाँ पर फिर आम श्रोताओं के लिए जो जो कह लें कि समझना चाहते हैं वस्तु स्थिति को, ये रेयर अर्थ क्या होते हैं, कहाँ इनका उपयोग है और दुनिया भर की नजरें चीन की इस हरकत पर क्यों टिकी हुई है?
रेयर अर्थ कुछ मिनरल्स होते हैं जो जैसे मैग्नेट्स हैं, अब वो हमारे चिप्स में जरूरत पड़ते हैं। अब आप देखिए, चिप्स कहने को छोटी सी साधारण सी चीज लगती है, हमारे टेलीफोन हो, हमारे रिमोट कंट्रोल हो, हम जब बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी हो, हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसमें चाहिए, मतलब लाइफ हमारे जो जीवन है।
यानी इसे श्रोता हम ऐसे समझें कि हमारी आपके रोजमर्रे की जितनी चीजें हैं उसमें इन रेयर अर्थ का कहीं ना कहीं उपयोग है और उसकी चाबी चीन के पास है जिसका उपयोग वो अपने हिसाब से कर रहा है।
वो चाबी उनके पास है
जी।
Or, and would you say that, you know, in this budget, the government has also, you know, announced certain incentives, certain schemes for promoting the, you know, for related to the rare earth metals. So would you say that that's very important?
Well, as I said earlier, it is important, but it's a time-taking process.
Right.
So we need to really work towards it, and with the hope that the efforts and the investment would yield results.
Right.
But for now, we need to negotiate, engage with the rest of the world, and see how to mitigate any risk arising out of that concern.
Right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति जैसी कई अनिश्चितताओं के बाद भी दुनिया की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ये मजबूती टिकी रहेगी इसके आसार कम हैं। उन्होंने वैश्विक आर्थिक वृद्धि को गति देने में भारत की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विकास के रुझान में बदलाव आया है और खासकर चीन की विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि भारत एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। उनकी ये टिप्पणी अगले सप्ताह अमेरिका के वॉशिंगटन में होने वाली विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठक से पहले आई है, जहां वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर एकत्रित होंगे।
वेरी क्विक क्वेश्चन मिस्टर चावला, वी सी दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF हैज प्रेज्ड इंडिया एंड यू नो इनफैक्ट इट्स दे आर सेइंग दैट इंडिया इज अ की ग्रोथ इंजन। सो एट अ टाइम लाइक दिस व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज यू नो जस्ट प्रोग्रेसिंग और द ग्रोथ इज mere 3%, how do you look at India's progress, you know, where we are more than 7% growth, we are registering that?
Well, we are expecting something like 6.8% according to RBI's projection. According to RBI projection, this year we'll grow by 6.8% GDP. Right. Well, that's quite a good number, given the global environment that right. we live in right now. The commentary from IMF is reassuring, but we need to be mindful of the global challenges, global headwinds right. that are there in front of us in the form of tariff war, which is
right.
which is prevalent all over the world. We need to be watchful, and agreements like India-UK are all important.
Let's move on to commodities. Global crude oil prices eased today as investors assess the ceasefire deal in Gaza that could ease tensions in West Asia. Brent crude was trading almost 0.3% down at $66.06 per barrel, and WTI crude was trading over 0.3% down at $62.34 per barrel when reports last came in.
Sarrafa Bazaar chale.
Yeah, in the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading nearly flat at 1,23,450 rupees per 10 gram, while silver was trading nearly flat with negative bias at 1,50,030 rupees per kilogram a short while ago.
चलें MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार की जाने तक 0.1% बढ़त के साथ 1,23,327 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं दिसंबर आपूर्ति वाली चांदी 0.1% बढ़त के साथ 1,49,963 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। प्रकाश जी, सोने पर हम चर्चा कर रहे थे और आपने कहा कि ये दुनिया की एक रुख बदलने वाली या ढांचागत परिवर्तन की दिशा में इसके मूल्य का बढ़ना और सोने की खरीदारी दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा किए जाना एक संकेत है, किस रूप में?
ये संकेत इस रूप में है, जैसे मैंने जिक्र किया कि पूरे संसार को, एक पूरे वर्ल्ड को एक रिजर्व करेंसी चाहिए। रिजर्व करेंसी की जो डोमिनेंस थी डॉलर के रूप में हमको दिखती थी। हमारा देशों का व्यापार देखे तो डॉलर ही डोमिनेट करता है। तो उस सूरत में जो उथल पथल चल रही है संसार के वैश्विक बाजारों में और टैरिफ वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, तो पूरे खासतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स में ये कंसर्न है, कहीं ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा अपनी डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं डॉलर पे। हम सबको एक रिजर्व करेंसी के रूप में गोल्ड का भंडारण करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। इसलिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड बड़ी बढ़ रही है, ज्वेलरी डिमांड कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है।
हमारे निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, बस एक पंक्ति में?
आप भी निवेशक भी स्मार्ट है, मैंने जिक्र किया, आप भी गोल्ड का ETF लीजिए, स्टॉक मार्केट में जाइए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए,
यानी गहने को छोड़कर सोने में निवेश कीजिए, बस यही,
और डिजिटल फॉर्म में
कीजिए। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise around 0.5%. Major Asian markets close mixed. And Prime Minister Narendra Modi says country's digital ecosystem is setting global standards for innovation and inclusion. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, goodbye. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Watch it, son.